أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ان شاء الله تعالى آج ہم سورة النساء آیت نمبر 24 سے 31 تک کریں گے ان شاء اللہ تعالی. جو آج ہم پارا شروع کر رہے ہیں اس کی پیچھے جو ہم آیات پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے. وہ جو آیت ہم نے لاسٹ پڑھی تھی کیا تھی، آپ کو کچھ یاد ہے؟ محرمات کی لسٹ تھی نا، کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے بعد، اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وراثت کے احکامات، جن کے اوپر بہت سارے سوالات آئے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ زیادہ اس علم کو سیکھیں کہ بھئی اتنا حصہ اس کا ہے تو پھر فلاں کا کتنا ہے، اور اس کا اتنا ہے تو پھر فلاں کا کتنا ہے، تو پھر آپ وراثت کے آپ ریکارڈنگز ہماری ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں انشاءاللہ. اور 7 to 12 آیا ہم نے، 7 سے 12 تک تقریباً وراثت کے بارے میں باتیں پڑھی تھیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن آپ نے کیسے ہی علم الفرائض لوگوں کو سکھایا. جو آج میں اور آپ اگر ویسے پڑھیں، ہمیں نہیں اس علم کا پتہ ہو تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اور دیکھیں پھر آپ لوگوں کے کتنے کوسچنز ہیں کہ اس کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہونے کے باوجود آپ نے وہ باتیں بتائیں جو آج تعلیم یافتہ ہو کے بھی ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا اللہ تھا، اس سے پتہ چلتا یہ معجزہ ہے نا، ورنہ کوئی نہیں ایسے سمجھ سکتا اور کوئی اتنی باتوں کو سمجھا نہیں سکتا لوگوں کو. پھر آپ دیکھیں عورتوں کو اس زمانے میں کتنی وراثت ملا کرتی تھی؟ زیرو. اور ان کو جب ہاف دیا گیا تو یہ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ ان کو کیوں دیا جائے. یہ گھر بیٹھی ہوتی، نہ کسی جنگ میں جاتی ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ یہ کچھ کماتی ہیں، پھر کیوں ان کو ملنا چاہیے؟ تو وہاں انہوں نے سوال کیا کہ ہاف کیوں ان کو دیا جائے، اور 1400 سال بعد آج بھی یہی سوال ہے کہ ان کو ہاف کیوں، ان کو تو پورا ملنا چاہیے. وہ کہتے تھے ان کو ہاف کیوں، ان کو تو زیرو ملنا چاہیے. تو دیکھ لیں کہ کلچر بدل جاتے ہیں، سوسائٹیاں بدل جاتی ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، مگر اللہ کا قانون سیم ہے، وہ نہیں بدلتا. اور یہی ہماری بات ہونی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی چیز کیسے بھی وہ نارمل سمجھی جاتی ہو، مگر ہم نے اس کو لے کر نہیں چلنا کہ ہم یہ سوچیں یہ کیوں ایسے ہے، کیوں نہیں پورا دیا جاتا، لڑکے سے آدھا کیوں اس کو دیا گیا ہے، اس کو تو پورا پورا ملنا چاہیے، فلاں کو اتنا کیوں ملا ہے، فلاں کے لیے کیوں اتنا رکھا گیا ہے. کتنے سارے سوالات آتے ہیں ذہن میں. تو یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حصے بنا دیے اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کتنے سارے احکامات دیے گئے، عورتوں کو پراپرٹی نہ سمجھو، ان کو کچھ دے دیا ہے تو ان سے واپس نہ لو، کتنا بھی تم نے قنطار بھی دے دیا ہو پھر بھی نہیں تم نے واپس لینا. اور پھر ایک آدمی کو یہ بتایا گیا کہ تم اگر اس کو چھوڑتے ہو تو یہ سوچو کہ کتنے تمہارے اس کے ساتھ قربت کے دن گزرے ہیں، کتنے انٹیمیٹ ٹائم تم نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، کہ تم کیسے اس سے کوئی چیز لے سکتے ہو. کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. پھر بھی اگر عورتوں کو شکایت رہے کہ نہیں ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے اسلام میں یا کچھ ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ پڑھتی تو ہے نہیں خواتین، اور بس سنی سنائی باتوں کو جو بھی لوگوں نے پروپیگنڈاز کیے ان کے اندر آ جاتی ہیں. یہ آیتیں کتنی صاف طور پہ بتاتی ہیں کہ کتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حقوق ہی نہیں، اللہ نے وکالت کی ہے عورت کے لیے. مردوں کو کہا ہے کہ وہ تم ایسے کرتے ہو، کیسے تم یہ کر سکتے ہو، ان کو پروٹیکشن دی ہے. یہ ہیں جن کے ساتھ تم نہیں شادی کر سکتے، تمہارا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہے جائز. اور ان کے اندر سب سے پہلے جو لسٹ تھی، اگر آپ اس پوری آیت کو، جو آیت 23 ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ کریں تو 3 قسمیں اس میں بنتی ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں رشتے، अब बती हराम है, ये पोपियां खालाएं भतीजियां भांजियां माएं बेटियां बहनें, ये अब दी महरम है, इनसे हमेशा के लिए हराम हो गया कोई भी ऐसा ताल्लुक रखना चाहवानी। दादी परदादी नानी परनानी सब इसमें आ गई, बेटी पोती नवासी सब इसमें आ गई, नीचे तक बहने सुतेली बहने सकी बहने ये भी सब आ गई इसमें। तो उसके बाद दूसरी किस्म रजात की है, रजाई माएं भी और रजाई बहनें भी और रजाई जितने रिश्ते बनते हैं, जैसे रजाई खाला है, रजाई फूफी है, रजाई बहन है, तो ये सारी चीजें फिर उस उनके तहत रजाई भांजियां भतीजियां वो सब उसी तरह जैसे नसबी रिश्ते हराम हो जाते हैं, उसी तरह रजात से भी रिश्ते हराम हो जाते हैं। फिर आप तीसरा देखेंगे कि जो निकाह के ताल्लुक से हैं रिश्ते, जिनमें सास आ गई, जिसके अंदर रबीबा आ गई, जिसमें ऐसी यानी वो जो इस वजह से कि निकाह इंसान कहीं करता है उसकी वजह से, जैसे बहू हो गई, ये रिश्ते हराम किए गए, और दो बहनों को भी एक जगह जमा करना ये भी हराम किया गया, ये भी निकाह के जरिए ही होता है ना, ये भी रिश्ता हराम हुआ। ये फहरिस्त जो है वो आगे से आगे, फिर पहली तो बिल्कुल अब्दी महरमों की है, फिर आगे से आगे, फिर आप देखते हैं फिर आगे इनके अंदर, यानी एक वक्त में दो बहनों के साथ नहीं शादी की जा सकती, और उसी की कंटिन्यूएशन ये अगली आयत है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका उसी से ताल्लुक है। वो अभी आयत खत्म नहीं, यानी बात खत्म नहीं हुई, आयत तो मुकम्मल हो गई लेकिन बात अभी जारी है, मगर ये पारों की तकसीम जो है ना ये बहुत बाद में की गई है, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में सिपारे इस तरह से तकसीम नहीं थे, तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि बात तो मुकम्मल नहीं हुई थी, पारा मुकम्मल हो गया, तो आप बहुत जगह पे आप देखेंगे कि बात आगे जाके मुकम्मल होती है और अधूरी बात छोड़ दी जाती है एक पारे में। तो ये पारे सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए कि हम 30 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर दें उसके लिए, लेकिन आपको देखेंगे कोई बहुत ज्यादा रब्त नहीं आपको नजर आएगा। तो ये पारा हमारा शुरू होता है वल मोहसनात से। मोहसन किसको कहते हैं, कौन सी औरत मोहसनात है, क्योंकि आप एंड में अलिफ ता देखते हैं ना, इसका मतलब मुअन्नस के लिए है और जमा मुअन्नस है, जैसे मोमिना की जमा मोमिनात, तो मोहसिना की जमा मोहसिनात, ठीक है। तो मोहसिनात कौन औरतें हैं, और मिनन निसाई, तुम्हारी औरतों में से यानी मुसलमान औरतों में से जो मोहसिना। अब मोहसिना जो है ना, ये लफ्ज कुराने पाक में चार मानों में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, चार मानों में आया, इस ये माने लिख लें आप। नंबर वन शादीशुदा के, नंबर टू आजाद औरतें, नंबर थ्री पाक दामन औरतें, और नंबर फोर मुसलमान औरतें, ठीक है। अब इसका मैंने आपको लफ्जी माना तो बताया, किला तो उससे क्या ताल्लुक है, तो किला यानी किले में भी क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है, जब कोई किला बंद हो जाता है, पुराने जमानों में शहरों के गिर्द फसीलें बनाई जाती थी, किले के अंदर शहर हुआ करते थे, तो वो उनकी हिफाजत के लिए होते थे कि दुश्मन से हिफाजत रहे। इसी तरह एक मुहसिना औरत जो होती है वो भी एक किले के अंदर आ जाती है जबकि वो शादी कर लेती है, आप देखें कोई उसके ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठा सकता, कोई उसको कोई शादी का पैगाम नहीं दे सकता, कोई उसके साथ कोई ऐसा बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो शादीशुदा है, उसके हस्बैंड की प्रोटेक्शन उसको हासिल है। फिर आजाद औरतें, आजाद यानी वो गुलाम नहीं है, लौंडियां नहीं, तो खानदान की भी तो एक प्रोटेक्शन होती है। फिर पाक दामनी भी इसके अंदर आ जाती है कि पाक दामन औरतें, क्योंकि किला बंद है, और फिर इसके माना मुसलमान औरत भी, क्योंकि इस्लाम का भी एक किला है जिसके अंदर हिफाजत है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा इनमें से मीनिंग होगा, ये चार मीनिंग मैंने आपको बताया, इस जगह स्पेसिफिकली शादीशुदा का मीनिंग आएगा, ठीक है। अब देखें चार माने मैंने आपको बताया ना, उन चारों में से इस जगह कौन सा फिट होता है, शादी का। तो जो शादीशुदा है मीनन निसाई औरतों में से, यानी जो जो पिछली लिस्ट आ रही थी उसमें से, अब अगली वो एक कैटेगरी रह गई है जो शादीशुदा औरतों की, ये लास्ट वन रह गई है। इल्ला मा मलकत अईमानुकुम, सिवाय उन औरतों के जो तुम्हारी लौंडियां हैं, जो तुम्हारे हाथों तले हैं, मतलब तुम्हारी लौंडियां, वो चाहे शादीशुदा भी हो, उनके साथ तुम शादी भी कर सकते हो, ताल्लुक भी कायम कर सकते हो। अब ये क्यों कहा गया, इसको पहले समझने, पहले ये बात समझ आ गई है कि पिछले जो सारे रिश्ते थे उनमें एक लास्ट रह गया था, और वो क्या था, जो शादीशुदा औरतें हैं, यानी किसी की औरत की शादी हुई हुई है, तो तुम उसके साथ उस टॉप ऑफ निकाह, एक निकाह नहीं कर सकते, शादीशुदा औरत के साथ तुम अगेन शादी नहीं कर सकते। मगर हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है, वो है लौंडियों की। और वो कैसी है लौंडियां, पहले समझ लें क्या थी, कि यानी जंगी कैदी होती थी, जंग में पकड़ी जाती थी। जब वो जंग में पकड़ी जाती थी तो उस जमाने में कोई जेलें नहीं होती थी जहां पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को रखा जाए, बल्कि इसी तरह तकसीम कर दिया जाता था उनको, और मर्दों को, औरतों को, गुलाम, लौंडियां। और फिर जो लौंडियां होती थी वो जिसके हिस्से में आती थी, हुकूमत तकसीम करती थी, वो जिसके हिस्से में आती थी बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन होती थी, फिर वह उसकी के पास रहती थी और उसकी मिल्कियत होती थी। और फिर अब या तो वो उसके साथ शादी कर ले, तो शादी क्यों करे, वो तो जाहिर है एक गैर मुसलिमा है, और काफिरा के साथ शादी नहीं हो सकती। अब बहुत बड़ा इसका अजर बताया गया, अगर कोई इंसान उनकी तरबियत करे, उनको अच्छी तरह रखे, फिर उनको आजाद करे, वो यानी मुसलमान हो, फिर उनसे शादी कर ले। लेकिन ये जाहिर है उनका स्टेटस उस तरह से नहीं है, और उनको वो स्टेटस भी नहीं होना चाहिए जो कि एक खानदानी आजाद औरत का है जिसके साथ आदमी शादी करता है। तो इनका जो जंगी कैदी औरतें होती थी, इनको लौंडियां बनाया जाता था, और इनके साथ ताल्लुक कायम करना क्यों जायज था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एक रेज किया जाता है। हम बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि मुझे बहुत और अहम टॉपिक्स आज कवर करने हैं, और ये वो चीज है जो आज नापैद है, दुनिया में नहीं है, मगर इसके हवाले से इस्लाम के ऊपर बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं। हालांकि उस जमाने का ये एक नॉर्म था, ये एक ऐसा नहीं था कि कोई एक इस्लाम ने ये शुरू किया है, ये वो उस जमाने में ऐसा ही होता था, जैसे आज आपको बहुत सारी चीजें नॉर्मल लगती हैं, मगर अगर उस जमाने में देखा जाए तो वो चीजें नॉर्मल नहीं। आज जो हमारी कल्चरल चीजें हैं जो बिल्कुल गलत हैं, वो भी हमें लगता है कि इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो नॉर्म है जमाने का। उस जमाने में इस तरह से लौंडियों को रखा जाता था, हालांकि इस्लाम ने तो इतनी ज्यादा तरगीब दी इनको आजाद करने की, उसके लिए दोहरा अजर फरमाया, डबल अजर है जो कि इनके साथ फिर शादी कर ले। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में दो औरतों के साथ जो लौंडियां बना के लाई गई थी, उनको आजाद करके उनके साथ निकाह किया था, हजरत जुवेरिया के साथ और हजरत सफिया के साथ। तो जो लौंडियां थी, इनकी भी जाहिर है किसी जगह पे या तो इनको माशरे में ऐसे ही छोड़ दिया जाए, वो तवायफे बन जाए, या इनको कत्ल कर दिया जाए, या क्या किया जाए इनके साथ, फिर जो कैदी लाए गए उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। अब उससे उनको एक घर मिल जाता था, खाना पीना मिल जाता था, वो उनके घर के काम करते थे, और हर एक इंसान की जो वो जो औरत है उसकी जहाँ पे जिस्मानी और जरूरियात है वहां पे जिंसी जरूरत भी है, तो उसका मालिक उसको बीवी तो नहीं बनाएगा, मगर बीवी भी कैसे बनाया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया जाता है ना, और ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसके पास आई है, यानी ऐसे ही पकड़ के लेकर कहीं से भी पकड़ ली, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको मिली है। तो फिर क्या है, इसके अंदर समझ नहीं आती कि इसमें क्या ऐसी बात है जिसको कि इतना बड़ा कर दिया जाए कि अब इस्लाम तो लौंडियों के साथ भी ऐसे करने की इजाजत देता है। तो इसमें कोई अरे नहीं, बजाय कि वो बाहर जाके जिना करती फिरे, उनके मालिक उनको अपने घर के अंदर ही रखता था, मगर बीवी वाला रुतबा नहीं उनको मिलता था। आज की नौकरानियां इसके अंदर नहीं आती हैं, ना वो जंगी कैदी हैं, ना वो कहीं से खरीद के लाई गई हैं। तो सिर्फ वो हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद जब वो जंगों में पकड़ी जाती थी, तो चाहे उनके शौहर जिंदा हैं अपने अपने मुल्कों में, अपनी जगह में, मगर अब जब वो जंग में कैदी बना के लाई गई हैं, तो शादीशुदा होने के बावजूद अब उनका मालिक एक हैज तक, एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड तक वेट करने के बाद फिर उनसे ताल्लुक कायम कर सकता है। ठीक है, तो अब समझ आ गई कि शादीशुदा औरतें तुम्हारे लिए हराम है, मगर हाँ वो शादीशुदा औरतें जो लौंडियां बना के लाई जाएं वो एज है, एक हैज के बाद हलाल है, किताब अल्लाह ही अलैकुम, ये बात लिख दी गई है तुम पे, ये तुम्हारे जिम्मे, कि ये इस चीज को ऐसे ही ना समझना कि कोई बात ही नहीं है। ये जिन लिस्ट को, जो जिन औरतों की लिस्ट अल्लाह ताला ने दे दी है, इनको तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है, तुम इनके साथ नहीं ताल्लुक रख सकते, कोई भी इनके साथ निकाह करना जायज नहीं है। वअहिल्लकुम वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा तुम जिसके साथ भी शादी करना चाहो कर सकते हो, यानी इन महरम रिश्तों के अलावा या इन औरतों के अलावा जिनको जिनका बता दिया गया, इनके अलावा और दुनिया में कितनी औरतें हैं, वो सब तुम्हारे लिए जायज हैं उनके साथ शादी करना कि तुम उनको हासिल कर लो, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। ऐसे नहीं किसी भी औरत को पकड़ के और कह दिया कि भाई चलो ठीक है मैं इसके साथ शादी कर ली, मैंने इसको बीवी बना लिया, ऐसे नहीं हो सकता। अहिल्लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इनके अलावा, वराअ ज़ालिकुम यानी जो इनके अलावा है वो तुम्हारे लिए हलाल है, इन ये के यान ये के तुम तब तहु भी अम्वालिकुम, अन तब तहु भी अम्वालिकुम यानी तलाश करो अपने मालों के साथ। क्या मतलब है यहाँ, यानी यानी तुम उनको हासिल करो अपने माल दे के, मेहर मुराद है, मेहरों के देने के बाद तुम फिर उनके साथ निकाह कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही किसी के भी बना लिया बीवी, मेहर जरूरी है, ठीक है, यानी उसको हक दे के तब वो तुम्हारे लिए हलाल होगी। और दूसरी बात, नंबर टू, नंबर वन बात ये हो गई, अंत तब तब वो भी हमारे, नंबर टू बात, मोहसिनीन गैर मुसाफिहीन, नंबर टू ये शर्त है कि वो कैदे निकाह में आने वालियां हों, उनको लाने के लिए यानी उनके साथ शादी का इरादा हो, यानी जिंदगी गुजारने का तुम इरादा रखते हो, तब तुम्हारे लिए वो हलाल हैं। ऐसे ही नहीं कि वक्ती लज्जत के लिए, रात गुजारने के लिए, किसी के साथ टाइम पास करने के लिए कोई ऐसे ही कोई निकाह कर लेता है, उसको निकाह का नाम दे देता है। इससे पता चला कि हलाला जो है, हलाला कराना ये हराम है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि किसी के साथ शादी किस इरादे से कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए जायज कब है, हलाल कब है, जब तुम उनके मेहर उनको दोगे और जब तुम्हारा ये इरादा है कि हमने मैंने इनके साथ जिंदगी गुजारनी है। ऐसे ही नहीं है सिर्फ वक्त गुजारी के लिए, टाइम पास करने के लिए। ये बात समझ आ रही है? थोड़े से इसके वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हैं और नए हैं, लेकिन इनको समझें। गैर मुसाफिहीन, बदकारी ना करने का इरादा हो कि बदकारी के लिए नाइट स्पेंड करने के लिए, क्योंकि इस तरह के भी हैं लोग जिन्होंने निकाहे मुता को ये नाम दे दिया है कि एक बड़ा तरीका बना लिया है बदकारी करने का। निकाहे मुता आपको पता है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, यानी एक बंदा किसी के साथ शादी करता है और कहता है कि मैं इतने पैसे तुम्हें दूंगा, 6 महीने के लिए तुम मेरी बीवी हो, 4 महीने के लिए तुम मेरी, या 2 दिन के लिए मेरी बीवी हो, या ये हफ्ता तुम मेरी बीवी हो बन जाओ, तो वो उसको उसके पैसे देता है। ये निकाह जो होता था ये जाहिलियत के ज़माने में था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको एब्रोगेट नहीं किया था, इसको ख़त्म नहीं किया था, हत्ता के खैबर पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम कर दिया। फिर तो ये इस्लाम से पहले से चला रहा था, मगर खैबर में जाके इसको और पालतू गधों के गोश्त को हराम किया गया था। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कयामत तक ये वाला निकाह हराम है। पहले लोग ऐसे जाते थे, कहीं सफर पे गए, कहीं कहीं गए, तो वहां पे अगर महीने के लिए गए हैं वहां पे एक निकाह मुता कर लिया, लेकिन वो निकाह क्या था, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, ना किसी औरत को बसाने का कोई इरादा है, क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ना उसके नान नफके का कोई जिम्मेदारी आदमी पे होती, ना कोई तलाक, ना कोई इद्दत, ना कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये आज भी कुछ लोग करते हैं। एक औरत ने मुझे कहा कि वो मेरी फलां जगह से डाइवोर्स हो गई, तो अब मैंने किसी के साथ निकाह किया हुआ है फॉर 6 मंथ्स, वो आदमी जो है चलो चलो मुझे घर भी मिल जाएगा और उसके साथ रहूंगी भी और खाना पीना भी उसके घर में जाहिर होगा, तो मैंने 6 मंथ्स के लिए कर लिया। तो ये निकाह नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम कर दिया है, बता दिया गया यहाँ पे कि किस लिए तुमने ये निकाह करने, ये तो औरतें तुम्हारे लिए इसके अलावा, इस लिस्ट के अलावा औरतें जो हलाल हैं तुम्हारे लिए वो तब हलाल हैं जब तुम उनके मेहर भी अदा करते हो और तुम्हारा इरादा भी है कि इनके साथ मैंने जिंदगी गुजारनी। तो दो निकाह इसमें हराम हो गए ना, निकाह मुता भी और हलाला भी, चाहे आप उसको कहते रहें जो मर्जी। और बदकारी का इरादा ना हो कि ये बदकारी ही है कि कि भाई थोड़े दिन के लिए उसको बीवी बना लिया, वक्ती लज्जत के लिए। फमस्तमता तुम भी मिनहुन्न, तो जो फायदा उठाओ तुम उनसे, इन औरतों से जो भी फायदा उठा रहे हो, फायदा मतलब क्या है, तुम इनसे ताल्लुक कायम करते हो, तुम्हें इनसे औलाद होती है, तो ये फायदा आदमी को मिलता है ना औरत से, तो अब क्या करो, फ आ तू हुन्ना उजूरा हुन्ना, उनके मेहर उनको अदा करो, उनके अजर, अजर क्यों इसको कहा गया, औरत जो आदमी के लिए इतना बड़ा काम कर रही है तो उसका वो कोई मुआवजा तो नहीं दे सकता उसको, मगर ये जस्ट एक टोकन है, गिफ्ट है उसके लिए, ठीक है, ये औरत का हक है, ये आदमी उससे जो नफा उठा रहा है, मस्तमता तुम जो फायदा तुम उससे उठा रहे हो, तो उनके मेहर तो उनको दो। फरीदा, फरीजा समझ के, आप सोचें ये अल्फाज के आज इसको क्या समझा जाता है मेहर को, और यहां पे क्या कहा गया। तो मुंह से जब लोग बोलते हैं कि देना किसने है, तो फिर इसके बाद क्या रह गया, यानी नीयत ही नहीं है देने की, जबकि कहा गया कि वो मकरूज मरता है जो कि मेहर अदा किए बगैर मर जाए, कर्ज है उसके ऊपर, क्योंकि वो किसी का हक था, उसने हक मार लिया, हकूक की पूछ होगी कयामत के दिन, जिसने जिसका हक देना होगा, तो कयामत के दिन आप जाके पैसे तो होंगे नहीं, नेकियां अपनी देनी पड़ेंगी, और किसी ने अपना हक नहीं छोड़ना, वहां जाके कोई ये नहीं कहेगा मैं इसके ऊपर रहम का के चलो छोड़ देता हूँ, कोई नहीं छोड़ेगी, कोई बीवी नहीं कहेगी कि हाँ मेरा शौहर बड़ा अच्छा था तो चलो कोई बात नहीं इससे मैं नहीं लेती, नहीं वहां पे नेकियां ले लेंगी फिर। तो इसको बतौरे फरीजा अदा किया जाए, कितनी ज्यादा ताकीद है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, वला जुनाह अलैकुम फी मा तरादई तुम भी, और तुम्हारे पर कोई गुनाह नहीं है जो बाहम रजामंदी से तुम तय कर लो, मिम बादिल फरीजा मेहर के बाद, यानी अगर आपने कुछ मेहर तय किया हुआ है तो उसके बाद आप अगर कमी बेशी कर लेते हैं, कोई औरत कहती है कि नहीं चले 50,000 था आप मुझे 20 ही दे दें, कोई बात नहीं है, वो हालात नहीं आदमी के इतने अच्छे, या कह देती है माफ ही कर देती है कि नहीं चले छोड़े मैंने माफ कर दिया, अब आदमी ने इतना बड़ा मेहर रखा था उस वक्त हालात अच्छे थे, आदमी एकदम उसका बिजनेस डाउन हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई जो अब चली गई नहीं दे पा रहा, औरत कहती छोड़ दिया मैंने, तो कोई मसला नहीं है फिर, जो आपस में रजामंदी के साथ, प्रेशराइज करने से नहीं, रजामंदी के साथ हो वो ठीक है। दूसरा इसका एक और माना भी है, वला जुनाह अलैकुम फी मा तरादैतुम तुम भी, कि जब तुम पे कोई गुनाह नहीं है, यानी इस मामले में कि तुम इनसे शादी करो, जबकि बाहम रजामंदी के साथ, जब इजाबो कबूल हो गया है, वली की रजामंदी हो गई है, तो उसके बाद कोई फिर, यानी यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स है निकाह की, निकाह की रिक्वायरमेंट है मेहर, निकाह की रिक्वायरमेंट है कि वली का रजामंद होना, अगर लड़की है तो, लड़के के लिए वली की मौजूदगी जरूरी नहीं है कि उसका वली हो और वो भी रजामंद हो, लड़के की अपनी रजामंदी काफी होती है, लेकिन लड़की के लिए वली की रजामंदी जरूरी है, और इसमें लड़की को कोई कैद नहीं करके दिया गया, इसको भी हम बड़ा बुरा मानते हैं, हालांकि लड़कियां इतनी जज्बाती होती हैं, कोई आदमी थोड़े से डायलॉग बोलता है चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, ऐसे ही फंस जाती हैं उनकी बातों के अंदर, और आदमियों को बड़ी बड़ी तरीके आते हैं, वो उस तरह से जज्बाती नहीं होते, लड़कियां फौरन ट्रैप में आ जाती हैं, तो उनके लिए उनके वली को रखा गया ताकि उनके साथ, आपने देखा है, आप एक बात नोट करें, जिन औरतों के पीछे उनके घर वाले नहीं होते उनको ट्रीट कैसे किया जाता है ससुरालों में, और जिनके घर वाले पीछे से स्ट्रांग होते हैं उनका रोब कितना होता है फिर, ऐसा है कि नहीं है बताएं आप, तो वली इसी काम के लिए तो है, जब आदमी को पता होगा ना इसका पीछे वली है, मैं कोई गड़बड़ करूंगा तो पीछे हैं इसके लोग मुझे पूछने वाले, इसका बाप है या भाई है या कुछ है, तो फिर औरतों को नहीं वो कुछ समझते, इसीलिए औरत वली नहीं बन सकती किसी औरत की, कि वो कोई माँ उठ के कहे मैं अपनी बेटी का यहाँ पे कर रही हूँ मैं उसकी वली, ऐसे नहीं हो सकता, मर्द वली होना चाहिए, बाप है या भाई है या फिर और जो कोई, अगर वो भी नहीं है तो कोई और इमीडिएट रिश्तेदार, लेकिन ये जो हमने शुरू कर दिया कोर्ट को वली बना लिया, कि कोर्ट कोर्ट मैरिज हो रही है जी, वहां पे भी क्या होता है, जाके वकील के चैम्बर में बैठ के तो निकाह हो जाता है और उसके बाद कोर्ट उसको सिग्नेचर कर देती है, कोर्ट तो तब वली बनती है जिसका कोई वली ना हो, हुकूमत तब वली बनेगी, यदि एक औरत बिल्कुल ही बेयरम, मिसाल के तौर पे कहीं से कोई रेफ्यूजी औरत आई है उसका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, या कोई ऐसी बेचारी बिल्कुल ही लावारिस औरत है, तो फिर यतीम खाने में पली हुई एक बच्ची है, पता ही नहीं उसके कौन है। फिर जो हुकूमत वक्त है, काजी है, वो फिर उसका वली बनेगा। लेकिन जो बच्चियां भाव की शादियां करती हैं, वो बच्चियां अपनी वली की रजामंदी के बगैर शादी करती हैं, वो ये निकाह जायज नहीं है। ये निकाह सही नहीं होता कि ऐसे निकाह किए जाएं। क्या हदीस में आता है, जो औरत अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करे वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। तो ये आज ये चीजें बना ली गई कि नहीं कोई भी जा जाके करे और तो ठीक है, और उसके बाद फिर वही लड़कियां रोती हैं क्योंकि उनके बैकिंग कोई भी नहीं होती। आज की जो आयात है ना, मैं बहुत ज्यादा ये कहूंगी कि अगर आपके घर में कोई यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, तो आज की आयात उनके लिए बहुत ज्यादा समझने की है। तो यंग बच्चे कोई भी हैं, उनको साथ बिठाएं। आज का सबक इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, और माएँ भी इसलिए सुने कि ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये हमारी यानी माशरती जिंदगी से मुतल्लिक है, हमारे घरों से, हमारे खानदानों से मुतल्लिक है ये आयात। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजा इसका नाम नहीं है। इस्लाम ये भी, आप शादियां कैसे करते हो, कहाँ करते हो, किधर करनी है और किधर नहीं कर सकते। और यहां पे आप एक बात भी और नोट करें, ये जो जितनी लिस्ट आपने पढ़ी है, इसमें कहीं खाला जात, फूफी जात, चचा जात, ये जो कजन्स होती हैं, इनका भी कहीं जिक्र है कहीं जिक्र? लेकिन आज हमारे, आज इन मुल्कों में रहते हुए जहां पे दूसरों को देखा वहां पे ये सोच लिया कजन मैरिज तो बिल्कुल वो है, आई कजन इज लाइक अ सिस्टर, कजन तो बहन की तरह है, हम तो नहीं उसे शादी कर सकते। कहां पे लिखा है? कहीं पे भी चचा जात, फूफी जात, इनका तो कहीं जिक्र नहीं है। वो तो महरम नहीं है रिश्ते। तो यहां पे हमें पता चला बाहम रजामंदी, यानी लड़के की रजामंदी भी हो और लड़की के वली की भी और लड़की की भी, ये सबकी रजामंदी होनी जरूरी। चलो लड़के की तो है ही, वो तो निकाह करने आया, लेकिन लड़की भी और उसके वली दोनों रजामंद होंगे तो फिर शादी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वली रजामंद है, लड़की का तो कोई बात ही नहीं। नहीं, लड़की से भी इसीलिए कबूल कराया जाता है, मिन बादिल फरीजा, मेहर के बाद, मेहर मुकर्रर होने के बाद। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, तुम्हें हुक्म देने वाला, तुम्हें ये बातें समझाने वाला कौन है? कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई फलसफी नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है जिनकी थियोरियां रोज चेंज होती रहती। अलीम और हकीम जात है जिसके पास हर इल्म है, और उसका इल्म इंसानों की तरह शैलो नहीं है, उसका इल्म हर तरह से वो जानता है किसी चीज को, और हिकमतें हैं उसके अंदर। समझो इस बात को, उसने जो तुम्हें इल्म और हिकमत के बलबूते पे जो उसने अहकामात दिए हैं, उनको अपने लिए बुरा ना जानो, उनको अपने लिए ऐसे ना समझो कि कोई कैद है, एक मुसीबत है, आए हमें ऐसे कह दिया गया, अब निकाह को कैद कह दिया गया, हम तो निकाह के अंदर आना ये तो एक मुसीबत हो गई। नहीं, इसके अंदर तुम्हारे लिए कितनी खैर है छुपी भी, ये वो अलीम और हकीम को मालूम है। तो चाहे विरासत के अहकामात हैं, चाहे शादी के अहकामात हैं, अब एक लड़की का मुझे क्या वली की जरूरत है? लो, अब हम लड़कियां वली की रजामंदी से करें, लड़के अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हमें भी आजादी होनी चाहिए। नहीं, ये समझें ये बातों को, हम नहीं अपना उतना भला जान सकते जितना अल्लाह ताला को पता है कि हमारा भला किस में है। और फिर वमन लम यस्तते मिनकुम तौलन, एक आदमी को कहा गया अगर तुम्हारे पास फराखी नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम एक अयन के हल मोहसिनात मोमिनात के, तुम मोहसिना मोमिना औरत से, ईमान वाली मोहसिना, यहां पे मोहसिना का माना वो जो मैंने आपको 4 माने बताए ना, उनमें से आजाद औरत वाला माना है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट देख के पता चलेगा, लफ्ज तो वही है, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बनता है, यानी क्योंकि आगे जो बात आ रही है ना, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे आजाद औरत मुराद है। अगर आदमी को कहा गया तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी पे नहीं है, अभी इतने सेटल नहीं हुए हो कि तुम ना नफका उठाओ, एक खानदानी औरत जाहिर है जितनी कोई बड़े खानदान से होगी उसका जाहिर है उस मुताबिक होगा। आज भी सोसाइटी में देखा, अगर कोई बिल्कुल एक गरीब बच्ची से शादी कर रहा, उसकी इतनी डिमांड ही नहीं होगी, क्या डिमांड कर लेगी? उसका मेहर भी उतना नहीं रखना पड़ेगा जो किसी बड़े खानदान की औरत से करेगा, कोई ऐसी जो कि बड़ी जगह पे रहने वाली है, उसको उसके मुताबिक ही घर, उसको झोंपड़ी में तो नहीं ले जाके रख सकता, उसको उसके मुताबिक घर भी देना पड़ेगा, कपड़ा पैसा खाना पीना उसकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक होगी। तो हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई लोग अभी हो सकता है सेटल ही ना हुए। तो उनको बताया गया अगर तुम नाम नफका नहीं देने की वसत रखते जो कि मौसना औरत का होता है, और मेहर उतना नहीं रख सकते जो एक मौसना औरत आजाद औरत एक मांगती है कि मेरा इतना मेहर होना चाहिए, खानदानी औरत आजाद औरत कहती है कि मुझे इतना मेहर दोगे तो मैं शादी करूंगी, तो अगर तुम्हारे उनके साथ नहीं तुम इस्तात रखते फमिम्मा मलकत अईमानुकुम मिन फतायातिकुम अलमुमिनात, तो फिर जो तुम्हारी लौंडियां हैं तुम्हारी लौंडियों में से जो तुम्हारे अंडर हैं मोमिना हैं जो उनसे कर लो फिर, क्योंकि एक लौंडी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी, उसको मेहर उतना नहीं देना पड़ेगा। आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी जो आप समझे इसके अंदर एक बारीक नुक्ता है, और वो ये है यहां पे ये नहीं कहा गया कि ए आदमी अगर तुझे नहीं इस्तात है कि तू मेहर दे सकता हो एक आजाद औरत का तो कोई बात नहीं ना दे, ना दे तू, तू बगैर मेहर के ही कर ले या लिखवा ले, फिर देना किसने है, या नफके देने की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं तू अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो तेरे लिए रुख्सत है, तुझे इजाजत है कि तू इसके बगैर ही कर ले, ये नहीं कहा गया। इससे आप सोचे मेहर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये शादी की निकाह के शरायत में से है मेहर, और हमने इसको एक मजाक बना के रख लिया, यकीन जाने मजाक के सिवा कुछ नहीं रह गया, जहां पे दुल्हन की जूती कई हजारों में है वहां पे मेहर 32 रुपए है। हमें शर्म नहीं आती कि हम अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, जहां पे उसने जो जोड़ा पहना हुआ है वो लाखों का है, लाखों का, और उसका मेकअप कई हजारों का है, कई हजारों का, वहां पे मेहर कितना है 1,000 रुपया, बहुत बड़ा बहुत बड़ी छलांग लगा ली 1,000 रख ली, और जहां पे लाख रख ले वहां पे ये पता है कि लाख सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ताकि अनाउंस हो जाए कि कितना बड़ा मेहर रखा है, हमने देना नहीं है। यहाँ पे क्यों ना कह दिया गया किसके पास नहीं है इस्तेता, उसको कह दिया कि तुम लॉन्डी से कर लो, लेकिन ये नहीं कहा गया कि तुम जाओ ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए रुख्सत है, तुम्हारे लिए जायज है, तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना ये कहा गया तुम उनको ना 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 नफका देना, ना उनको खाने पिलाने की कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारे पर नहीं, खुद ही कमाती रहेंगी और खाती रहेंगी, तुम्हारे पर नहीं जिम्मेदारी क्योंकि तुम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। सोचें हमारा इस्लाम क्या है और हम आज जिंदगियां क्या गुजार रहे हैं, खुद सोचें कि कुरान के अहकाम क्या हैं, और फिर भी औरतें कहती हैं लो हमारे साथ तो कुछ ज्यादती हो गई, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, और क्या चाहिए, ये कहो कि तुम्हारे माशरे तुम्हारा कल्चर तुम्हें कुछ नहीं देता, उसको छोड़ो और इस्लाम की तरफ आओ, ये है जो आपको प्रोटेक्शन भी देगा, ये है जो आपको हकूक दिलाएगा, शौहर से भी हकूक दिलाएगा, और इससे हम भागते हैं दूर। और इसके बाद आप मुझे दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे इसके बाद बताएं कि यहां पे कहा जा रहा है अगर पैसे नहीं है आजाद और औरत का मेहर ज्यादा है खानदानी औरत से तुम नहीं कर सकते तो लौंडी से कर लो, ठीक है, इसके बाद आप ये बताएं यहां पे देने को कहा जा रहा है और हमारे माशरे में लेने का रिवाज है कि वालदैन से उल्टा डिमांड किया जाता है कि तुम हमारे घर भरो, लड़की ने आना है तो उसके लिए बिस्तर भी लाओ, उसके लिए बर्तन भी लाओ, चम्मच तक वो अपने लेकर आए, चादरें तक लेकर आए, अपनी हर हर चीज अपने घर से उठा के लाए, ये कितनी कबीह बात है और इस्लाम के अहकामात से कितनी ऑपोजिट बात है, कि इस्लाम कह रहा है कि दूल्हा दे और यहां पे ये कह रहे हैं दुल्हन दे, जो कि सरासर हिंदुआना चीज है, क्योंकि उनमें बेटी को बोझ समझा जाता है, तो ये जो अब आया ना लड़का ये तो उनके बोझ उतारने के लिए आया, कि मुसीबत एक उनके सिर पे थी वालदैन के, उस मुसीबत को अपने घर लेकर जाएगा, उस बोझ को अपने घर उठा के लेके जाएगा, तो अब मुझे चीजें दो क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ उठा रहा हूं। इस्लाम कहता है बच्ची तो रहमत है, रहमत है, कोई अपनी जान का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है, कोई रहमत तुम्हारे घर भेज रहा है, तुम इंतजाम करो उसके खाने पीने रहने सहने का। वो तुम्हारे घर को आबाद करने आई है, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने आई है, तुम्हारे घर की टेक केयर करने के लिए आई है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? अब इसके बाद बताएं, हम इनके साथ रहते रहते हमने उनकी चीजें ले ली, और हमारी अपनी जो बातें हैं, जो हमारे अपने तरीके हैं, वो कुरान के अंदर बस लिखे ही रह गए हैं, जिंदगियों में नहीं है। आज फिर ये आयतें पढ़ने के बाद वो माएं, वो बच्चे लड़के नहीं इतना कहते, उनको नहीं इतनी बातों को समझते, ये माएं बहनें साथ ये जो घर की खवातीन होती है ना, उनको बहुत ज्यादा होता है। कितना जहेज मिलेगा, क्या लाई है, किस घर से ज्यादा मिलना है, ये हमारे तरीके हैं। अब इन आयतों को पढ़ने के बाद आप बताएंगे हमें क्या करना है? क्या इसके बावजूद हमें जहेज डिमांड करना चाहिए, या फिर ये कह देना चाहिए नहीं आपकी मर्जी है, जो मर्जी दे दे? क्यों, ये भी एक तरीका होता है दूसरे को कहने का कि आप दे जरूर देना, और आप वो मर्जी का अपने उतना ना लेकर आए तो फिर क्या हो, जितनी इनकी मर्जी थी। तो फिर उस बच्ची के साथ किसी ने क्वेश्चन किया है कि देखें अगर नहीं जहेज लेकर जाते तो वहां पे इज्जत ही नहीं होती, इसलिए नहीं वो इज्जत देते क्योंकि वो खुद जाहिल है, उन इस्लाम के अहकामात को उनको नहीं पता, क्योंकि जो इस्लाम से रोशनास हो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसको तो खुद देना है, उसको तो खुद इस चीज के लिए एहतमाम करना है कि एक बच्ची आई है तो इसके लिए रहने का खाने का पीने का हर चीज का इसके लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं। घर कौन बसा रहा है अपना, लड़का, उसको ये सारी चीजों का इंतजाम करना है, तो हमने क्या बना के रख दिया? अब कुरान पढ़ने के बाद क्या हमें इन तरीकों को बदलना है या नहीं, या वैसे ही चलते रहना? इंसान लालची बहुत है ना, बहुत लालच है इंसान के, जहां से माल आ रहा हो किसको बुरा लगता है? इसलिए हम दीन पढ़ने के बाद फिर हम अपने तरीके आज क्या बदलें, आपकी मर्जी, नहीं आप उनको कहें कि नहीं आपने देना, आप अपनी बच्ची दे रहे हैं वही हमारे लिए काफी है, हमने एक चीज भी नहीं लेनी आपसे। और मैंने ऐसी शादियां भी देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बच्ची सिर्फ अपने तन के कपड़े लेकर आई है बस, और अपनी अपनी जो अपनी यूज का जो भी उसके कपड़े वगैरह हो गए हैं कुछ, बस दैट्स इट, एक सूट केस उसका बस, जैसे इंसान कहीं पे भी जाता है तो। अरे हमारे यहाँ तो ट्रक जाते हैं माशाल्लाह, बाकायदा ट्रक के ट्रक भेजे जाते हैं, तो वो लड़का पहले किस चीज के ऊपर सोता था, अगर ये लड़की नहीं सामान लेकर आना था उसके सोने के लिए उठने के लिए बैठने के लिए, तौलिए तक दिए जाते हैं, क्या वो लोग पहले खाना नहीं खाते थे, जो चम्मच तक दिए जाते हैं? तो ये कितनी बुरी चीज है जो हम करते हैं। और जहां हम ये कह देते ना नहीं वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी जहेज दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की दी थी तो पता नहीं क्या, आप ये खुद सोचें जिन लोगों को नहीं पता ना, तो वो ऐसी ये भी जहालत की बातें, क्योंकि ये हजरत अली ने पैसे दिए थे इन चीजों के कि ये आप इन चीज इससे ये चीजें ले लें, उनके लिए उनके पैसों से थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कोई जहेज दिया था, तो ये भी अपने जहन को क्लियर कर लें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जरा बताएं कौन सी कोई लिस्ट कोई बता सकता है, मेहर की तो हमें पता चलती है कि इसको कितना मिला था, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन के जहेज जरा आप बताएं कि कितने लेकर आई थी वो जहेज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की भी शादियां की थी या नहीं, कितने जहेज दिए थे उनको? हाँ मेहर पता चलते हैं कितने मिले थे। तो अगर हम नहीं ये चीजों को बदलेंगे तो कौन बदलेगा? तो अपनी सोच को बदलिए, अपने तरीकों को बदलिए, अब कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें, और ये मत कहें क्या करें फिर हम, क्या करें फिर माशरा ही ऐसा है, क्या करें हम, नहीं हम आज स्टैंड नहीं लेंगे तो ये चीजें कभी नहीं बदल सकती, और आप जो पढ़ रहे हैं कुरान को ये नहीं अगर बदलेंगे तो कौन बदलेगा? वल्लाहु आलमु बीईमानिकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया। अब ये लौंडियों के साथ उस जमाने में भी शादी करना तो बहुत ही कम चीज समझी जाती थी, इनसे क्यों शादी की जाए, ये तो कम स्टेटस की है, तो अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह तुम्हारे ईमानों को जानता है कि तुम सारे ईमान वाले हो, वो भी ईमान वाली है, तुम भी ईमान वाले हो, बादुकुम में बाद तुम में से बाज में से, सारे आदम की औलाद है ना, अगर वो लौंडियां है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ कोई और चीज मखलूक हो गई, या कोई कोई उनके अंदर गंदगी पलीती हो गई, वो भी तुम्हारी ही तरह है। पहले हमने शुरू सूरह निसा का क्या पढ़ा, एक माँ बाप की औलाद हो तुम एक बिग फैमिली हो बस। तो उनका भी ईमान वाली जो लौंडियां, यानी ऐसे नहीं कि मुशरिका लौंडी के साथ कर लो, फन के हुन्ना भी इतनी अहली हिन्ना। अब यहाँ पे भी देख लें आप, निकाह की जो शराइत हैं वो बताई गई, उनके साथ निकाह करो, ऐसे नहीं कि तुम कोई भी लौंडी है तो उसके साथ निकाह कर लो, बल्कि क्या कहा गया भी इतनी अहली हिन्ना, उनके अहल के, अहल से मुराद यहाँ पे क्या, उनके जो आका हैं, जो उनके वली हैं, उनके इज़न के साथ, क्योंकि लौंडी का जो आका होता है वही उसका वली होता है, उसके कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते कि कोई उसके बाप उसका वली होगा, उसका जो जिसके पास जिसकी मिल्कियत में वो है उस वो उसका वली होता है। अब ये जरूरी नहीं था कि हर एक जो आदमी था वो अपनी लौंडी के साथ ताल्लुक रखता था, ताल्लुकात कायम करता था, नहीं, बाज लौंडियों की शादियां, कोई मांगता था रिश्ता तो उसकी शादी कर देते थे वो, लेकिन मिल्कियत तो उसी मालिक की रहती थी। तो उनकी इजाजत के साथ तुम शादी कर सकते हो। तो यहां पर भी पता चला कि वली की रजामंदी कितनी ज्यादा जरूरी है, कि एक लौंडी भी ऐसे नहीं कर सकते खुद ही उठ के जाके कहीं शादियां करने लगे, उसको भी वली की रजामंदी चाहिए। वा आतू हुन्ना उजूरा हुन्ना बिल मारूफ, इनको भी इनके मेहर दो, चाहे वो लौंडी है। तो आज देखें अल्लाह अकबर, इसको बात को मैं पढ़ के सोच रही थी, आज एक आजाद और खानदानी औरत की इतनी वैल्यू भी नहीं रही जो एक लौंडी की उस जमाने में होती थी। लौंडी को भी कहा गया मेहर दो तो लौंडियों को भी मेहर दिए जाते थे, फिर उनकी शादियां होती थी, लेकिन आज सद अफसोस है। आज आप क्या कहते हैं कि औरत आजाद हो गई, औरत को तो बड़े हकूक मिल गए, औरत को तो ऐसे हो गया। आज तो औरत को जो इस्लाम ने हकूक दिए हैं वो उनसे भी महरूम है। जाहलियत के जमाने वाली चीजें चल रही हैं, आजादी कोई नहीं है, ये है आजादी कि तुम उनको दो, उनको किंतार तक तुम दे सकते हो, भर भर के भी दे सकते हो। अब इसके ऊपर कुछ लोगों को बड़ा एतराज होता है, बाज दफा लड़के के ही घर वालों को बड़ा घेरते हो, क्यों क्यों दें हम, क्यों हम इसकी झोलियां भरें, क्यों हम इसके नाम कुछ लगा दें। और अगर उनका बेटा या भाई कुछ अपनी बीवी के नाम कर देता है, उसको तोहफा दे देता है या कुछ, तो इस पे बहुत बड़ा एतराज किया जाता है, हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर मेहर में भी देना चाहता है कोई दे सकता है, अगर उसके पास इतने अफोर्ड कर सकता है देना चाहे दे दे। तो आ तू ना दो उनको उनके मेहर बिल मारूफ, भले तरीके के साथ, यानी जो नॉर्म है उस वक्त का उसके मुताबिक उनको भी दो। मोहसनातिन, और वो भी ऐसी हूं औरतें जो मोहसनात हो, यानी पाक दामन और पाक दामन रहना चाहती हूं। वही शरायत है जो आजाद औरत से निकाह के लिए थी ना, यानी ये नहीं कि बस उनके साथ भी तुम ऐसे दिल लगी के लिए कर लो, कि लौंडी ही है ना फिर क्या हुआ। तो वो भी वहां पे भी गैरा मुसाफे हाथ ना हो, ना बदकारी करने वाली हो, वला मुत्तखजाती अखदान, ना छुपी दोस्तियां बनाने, बल्कि सारे निकाह में महफूज होने वाली मोहसनात हो, यानी जो एक कैद में वाकई आने आने वाली हैं, एक जिंदगी गुजारने का इरादा है उनके साथ, वो भी ऐसी हो कि वो भी जिंदगी गुजारने के लिए आ रही हैं, वो भी सिर्फ इसके लिए नहीं है कि थोड़ी देर के लिए वक्ती एक पैसे के लिए कर लिया, मेहर हासिल करने के लिए कर लिया, या आपने कोई दिल लगी के लिए कर लिया, इसके लिए नहीं हो, वो भी मोहसनात हो कि वो पाक दामन रहना चाहती हैं शादी करके, या अपनी जरूरत यही पूरी करनी है। वो भी ऐसी हो कि बदकारी करने वाली ना हो, उनकी करेक्टर ऐसा लूज ना हो, क्योंकि लौंडियां थी ना, तो वो जाहिर है खानदानी औरत एक चीज देखती है कि मेरे खानदान की इज्जत है, ये है वो, फिर उसका एक डिफरेंट तरीका, तो उसकी ब्रॉट अप डिफरेंट हुई होती, जो लौंडियां हुई वो उस तरह से नहीं होती। आप देखते हैं कि जो औरतें आज भी बेचारियां बिल्कुल ऐसे स्ट्रीट्स पे आ गई होती हैं, फिर उस उनके वो कानून कायदे नहीं रहते, फिर उस तरह से वो अपनी इज्जत की भी हिफाजत उस तरह ना कर पाती हैं, और जब वो ऐसे हाथों में चली जाती हैं तो फिर वो ये उनके लिए चीज कोई इतनी मुश्किल नहीं रहती उसके बाद, वो किसी साथ भी ताल्लुक रख ले। वला मुत्तखिजाती अखदान, और ना बनाने वाली हैं छुपे दोस्त, छुपी दोस्तियां करने वाली ना हो, ऐसियों के साथ ना शादी करो। तो वो ऐसी होनी चाहिए जो, यानी यहाँ पे बताया गया कि छुप छुप के दोस्तियां करना, छुप छुप के ताल्लुकात रखना, ये इसको भी एक कंडेम किया गया। ये इश्क मुआशके चलाना, खुफिया ताल्लुकात रखना, ये ऐसी ना हो ये लौंडियां। और आज कल देखें ये खुफिया दोस्तियां कितनी कॉमन हो गई हैं। अब तो चैटिंग के नाम पे, और ये जो फोन्स आ गए हैं उस पे, और जो फेस टाइम है, और तरह तरह के और तरीके हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ बात करनी बल्कि देखना भी दूसरे को, उससे आधी मुलाकात से भी ज्यादा मुलाकात हो जानी, और वहां वहां तक दोस्तियां कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई बात ही नहीं रह गई। एक लड़की के बहुत सारे भी बॉयफ्रेंड हैं। तो ये ऐसी ना हो, जब एक लौंडी के लिए भी इस चीज को बताया गया, तो एक शरीफ खानदानी औरत को कैसा होना चाहिए? तो औरत किसी भी आदमी को, नामहरम आदमी को दोस्त नहीं बना सकती, बगैर निकाह के किसी के साथ भी, जो नामहरम है उसके साथ बगैर निकाह के ताल्लुकात नहीं रख सकती। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि छुपी दोस्तियां मना है तो खुली दोस्तियां हम कर सकते हैं, ये नहीं, बल्कि ये चीज क्योंकि आज ऐसी कॉमन हो गई कि ये भी एक बुरी बात नहीं समझी जाती, तो माँ बाप के लिए भी ये एक कोई मसले की बात नहीं है कि बेटियां अगर बॉयफ्रेंड बना के उनके साथ घूम फिर रही हैं तो वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। यानी ये डेटिंग कल्चर आज हमारे अंदर भी ऐसे हो गया, हालांकि लौंडी तक को मना किया गया कि वो छुपी दोस्ती नहीं रख सकती, वो अब आ जाएगी निकाह के अंदर तो पाक दामन रहने के लिए आए, उसके बाद बदकारियां नहीं करनी, उसके बाद छुपी दोस्तियां ना हो। फाइजा ओहसिन ना, तो जब आ जाए ओहसिन हसन के अंदर, यानी किले में आ जाए, मतलब क्या है कि निकाह में आ जाए, निकाह किला है ना, इन अतई ना भी फाहिशन, फिर भी अगर वो फहाशी करती हैं यानी कोई जिना करती हैं, फालेहन न निसुमा अलल मोहसनाती मिनल आजाब, तो आपको पता लौंडी का आधी सजा है आजाद औरत से, यानी वो उसको सिर्फ कोड़े लगेंगे, उसको रजम नहीं किया जाएगा। मगर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि वो चूंकि लौंडियां हैं तो इसलिए उनको तो कोई सजा ही नहीं मिलेगी, नहीं, अगर वो भी जिना करती हैं तो उनको भी सजा दी जाएगी। मगर देखें, याद रखें, इस्लाम ना सजाओं के ऊपर पहले जोर नहीं देता, पहले क्या किया गया, सद्दे जराए, यानी जो रास्ते हैं ना उस तरफ जाने के उनको बंद किया जाता है, यानी आपको अवेलेबिलिटी दी जाती है कि आप शादी कर सकते हैं, एक करनी है, दो करनी है, तीन करनी है, चार करनी है, कर लो, लेकिन तुमने गलत काम नहीं करना, जिना नहीं करना। अगर तुम्हें आजाद औरत नहीं मिल रही, उनके मेहर इतने बड़े बड़े उन्होंने रखे हुए, डिमांड करती हैं, तुम किसी लौंडी से कर लो, किसी लोअर स्टेटस की औरत से, जैसे आज मसलन है किसी माशरे के अंदर है तो वो लोअर स्टेटस की औरत से कर सकता है कोई इंसान। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप, ये आपको जवाज मिल जाता है कि शादी नहीं हुई तो आप जो मर्जी करते फिर, और शादी नहीं किसी की हुई तो वो अपनी नजरों की हिफाजत करे, रोजे रखे। शादी क्यों नहीं हो रही, अगर उस स्टेटस में नहीं मिल रहा तो अपने से कम स्टेटस में जाके कर ले, मगर कहीं पे गुंजाइश नहीं मिलती कि वो बदकारी करे, कहीं पे गुंजाइश नहीं है कि वो कोई हराम कामों में पड़ जाए, हराम तरीके या हराम जगहों पे जाए। तो ये सजाएं बताने से पहले इस्लाम रास्ते बंद करता है, पाकीजा माहौल देता है, फहाशी को कंडेम करता है, हलाल रास्ते खोलता है, और फिर भी कोई ये हदें तोड़ के हराम काम करता है तो कहता है अब सजा दो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हर तरफ पहले जिना को आसान बनाया हुआ है, निकाह को मुश्किल तरीन बना लिया, जब तक सेटल ना हो जाए, जब तक इतने पैसे ना जमा हो जाए, जब तक ऐसे ना हो जाए, वो ना हो जाए, तब तक जाके हमने करनी ही नहीं शादी। अब वो लड़के 30-30 साल के हो जाएं, लड़कियां 30-30 साल की हो जाएं, कोई शादी का इरादा नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहते, कोई किसी और तरह से अपनी ख्वाहिशात फिर पूरी करते हैं। इस्लाम कहता है कि नहीं, ये हलाल रास्ते हैं, ये सारे बहुत सारे हलाल रास्ते ऑप्शंस दे दी, और फिर कहा फिर भी कोई इन हलाल रास्तों को छोड़ के हराम रास्तों पे जाता है तो फिर ये सजा है उसकी। ज़ालिका लिम, अब देखिए लौंडी के लिए भी, अगर उसकी शादी नहीं भी हुई भी तो उसके मालिक से उसकी जरूरत पूरी हो रही है, वो भी जाके जिनाकारियां नहीं कर सकती, ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ اس کے لیے ہے جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے, جو ڈرے کہ میں کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں. کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ میں کہیں زنا کر بیٹھوں, یہ نہ ہو کہ میں کوئی ایسا گناہ میرے سے یہ ہو جائے, تو اب وہ غلط راستے پہ پڑنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ چلو میں کسی لونڈی سے ہی کر لیتا ہوں. آج کے وقت میں لونڈیاں نہیں بھی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی غریب لڑکی سے کر لیتا ہوں, جہاں پہ کوئی بےچارے ماں باپ اس کی کیا ڈیمانڈ ہوگی. تو میں کسی غریب گھر کی بچی سے کر لیتا ہوں, کسی یتیم بچی سے کر لیتا ہوں, کوئی ایسی سے کر لیتا ہوں جو جہاں پہ مجھے اتنا کچھ زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے. تو ذالک لمن خشی العنت, یہ اس کے لیے جو ڈرے اس بات سے کہ میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں. یعنی انسان کو گناہ میں پڑنے کے اندیشے پر, جس کو پتا ہے کہ میرے سے کنٹرول نہیں ہوگا اپنا آپ, وہ پھر کوئی راستہ اس طرح سے حلال راستہ نکالے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن اگر تم صبر ہی کر لو تو اچھا ہے. اگر تم اس میں نہ پڑھو گے, تم لونڈیوں کے ساتھ کرو کہ ظاہر ہے یہ لونڈی سے شادی کر لے گا, پھر اس کے بعد آگے نسلوں تک کی بات ہوتی ہے. وہ لونڈی اس طرح سے ہو سکتا ہے نہ اس کی نسلوں کے لیے کر سکے ان کی تربیت, جیسے ایک خاندانی عورت کر سکتی ہے. تو اگر تم اپنی شہوت پہ قابو پا ہی لو تو یہ بہتر ہے کہ پھر اس کے بعد اتنا زیادہ جہاں پہ سٹیٹس کا فرق آ جائے تو پھر وہاں پہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں ایسی جو کہ بعد میں نبھا نہ ہو. تو بہتر ہے کہ تم پھر صبر کر لو. مگر تیسرا کوئی آپشن نہیں دیا گیا, یا تو پھر خاندانی عورت سے کرو, نہیں پھر لونڈی سے کر لو, نہیں تو صبر کر لو. کہیں اور کوئی آپشن ہے اس کے سوا کہ پھر اس کے بعد نہیں تم جاؤ کہیں سے فرینڈشپس کر کے تو وہاں پہ تم اپنے شوق پورے کرو. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یرید اللہ, اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ لیبین لکم, تاکہ بیان کر دے تمہارے لیے, کھول کھول کے بیان کر دے. بیان کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیان کا معنی ہوتا ہے کہ تاریکی سے روشنی میں آ جانا, کسی چیز کو ایسے کھول کے بیان کر دینا کہ انسان کو اندھیرے میں نہ رہے, وہ روشنی میں آ جائے, اتنا کسی چیز کو کلیئر کر دینا. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتا نہیں ہے, وہ سمجھ ہی نہیں ہے. اب ایسی ایک روشنی کر دی گئی, ایسی بات کھول کے بیان کر دی گئی کہ وہ اندھیرے سے نکل گیا, یعنی جہالت کے اندھیرے سے نکل گیا. اس کو اب پتا چل گیا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. یہ ہے بیان کرنا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم ڈارکنیس میں رہو, تم جہالت میں رہو, تمہیں پتا ہی نہیں ہے, سب کچھ کر لیا اس کے بعد کہا ہائے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا. تو اللہ نہیں چاہتا یہ کہ تم ایسے بالکل ہر چیز سے, اور اس کے اندر بڑا فخر سمجھتے ہیں, ہمیں تو پتا ہی نہیں, ہمیں کہاں پتا ہے, ہمیں کوئی اسلام کے احکامات نہیں پتا. یعنی لا علم رہنے کو نا, اپنے لیے باقی چیزوں سے لا علم رہے تو اس پہ شرم کھاتے ہیں, لیکن آج وہ حال ہے کہ اسلام سے لا علم رہنا بھی فخر کا باعث ہے. ہمیں کہاں پتا ہے قرآن کا کہ کیا لکھا, ہمیں اسلام اسلام کی کوئی چیزیں نہیں پتا. اتنے فخر سے آپ بتا رہے ہیں. آپ کو ویسے وہ کوئی یہ پوچھے آپ کو فیشن کا پتا, آپ کہیں ہمیں تو کوئی فیشن کا پتا ہی نہیں. اس کو بتانے میں تو بڑا عیب محسوس کرتے ہیں, بڑی شرم محسوس کرتے ہیں, ہمیں آج کے فیشن کا ہی نہیں پتا, میں اتنی بیکورڈ ہوں, مجھے اتنا نہ پتا ہو. تو کچھ نہ کچھ بتانے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ سب کو پتا ہو کہ میں بھی اپ ٹو ڈیٹ ہوں, مگر دین کے معاملے میں پیچھے رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں. اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے کیا, کہ بیان کر دے تمہارے لیے, کھول کے تم پہ واضح کر دے, بالکل تمہیں اچھی طرح سمجھا دے, تمہیں بالکل کسی چیز کا شک و شبہ نہ رہے. اور پھر بھی ہماری کیا شکایت ہے, سمجھ ہی نہیں آتی کیا صحیح ہے کہ کیا غلط ہے, میں تو بڑی کنفیوز ہوں. وہ اللہ نے خود ارادہ فرمایا, جب وہ ارادہ کر لے تو پھر کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا. تو اس نے تو سب کچھ تمہیں بیان کر دیا, کھول کے بتا دیا. بات صرف کیا ہے, ہم خود علم لینا ہی نہیں چاہتے, یہ ہمیں مان لینا چاہیے. ہم خود جاننا ہی نہیں چاہتے, اور اس کی کیا وجہ ہے, وہ آگے آ رہی ہے. ہم خود ہی اندھیروں میں ہی رہنا چاہتے ہیں, ورنہ اللہ نے نہیں کمی کی, اللہ نے تو سب چیز بتا دی ہمیں, اور کھول کے بتا دی, واضح ہے. اب ان میں کیا کنفیوژن ہے, ہم خود ہی نہ سمجھنا چاہیں تو الگ بات ہے, آنکھیں بند کرنا چاہیں چیزوں سے تو الگ بات ہے. लेकिन अल्लाह ताला लियुबय्यिना लकुम, ये इरादा रखता है कि तुम्हें बयान कर दे हर बात को। वह यहदी अकमर, अल्लाह ताला तो क्या चाहता है कि तुम्हें रहनुमाई करे, तुम्हें हिदायत दे। किसकी तरफ? हिदायत का माना पता है ना आपको, पहले भी बड़ी दफा आया, राह दिखाना, रास्ते पे चलाना, मंजिल तक पहुंचाना, ये होते हैं हिदायत के स्टेप्स। तो अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए। कौन सी मंजिल, कौन सा रास्ता? सुनन अल्लदीना मिन कबलिकुम, उन लोगों के तरीकों पे तुम्हें चला दे जो तुमसे पहले गुजरे। कौन से लोग पहले गुजरे? यानी अंबिया, सालेहीन, नेक लोग, उनके जो तरीके हैं, अल्लाह चाहता है तुम्हें उनके तरीकों पे चला दे। देखिए, अल्लाह ताला का इरादा हमें मुश्किल में डालना नहीं है। हम सोचते हैं हम अल्लाह हमें मुश्किल में डालना चाहता है। नहीं, अल्लाह ताला तो तुम्हारे लिए बयान करता है, तुम्हारे लिए कितना इंतजाम किया, पैगंबर तुम्हारे लिए भेजा, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कुरान उतारा। कभी पढ़ती हूँ ना, पिछले दिनों में पढ़ रही थी इस चीज को, कि किस तरह वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होती थी, तो कैसे नबी अलैहिस्सलाम की कैसे हालत हो जाती थी। कौले सकील है ना, ये भारी कलाम है, तो आप सल्लम के कैसे पसीने आने लगते थे सर्दियों में भी, और ऊंटनी पे भी सवार होते थे, तो इतनी बोझ को ऊंटनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बैठ जाती थी ऊंटनी, इतना आपके ऊपर बोझ होता था, वही लेना आसान काम नहीं था। आप सल्लम ने देखें 23 साल इस बोझ को लिया कि दिन रात वही आ रही है। कितनी दफा आई होगी, मल्टीपल टाइम्स आती रही। हमारे लिए इस मुशक्कत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया, जो बड़ी मुश्किल होती है, वही लेना आपके ऊपर बड़ा मुश्किल काम होता था, और हमने क्या कदर किया इसका, कि रख के बस छोड़ा हुआ है और कुछ नहीं। हमारे ऊपर तो ये लेना बोझ ही नहीं है, हमारे ऊपर तो इसको सीखना उस तरह से बोझ नहीं है, हमें तो बनी बनाई चीज मिल गई, पका पकाया खाना आ गया हमारे सामने, फिर भी उसके लिए कोई मेहनत के कोई शौक नहीं है, फिर कोई सीखने की उस तरह लगन नहीं है जैसे हम बाकी कामों के लिए शौक रखते हैं, ऐसी मेहनत नहीं है, ऐसी भाग दौड़ नहीं है। वर्थलेस कामों के लिए हम उतनी भाग दौड़ करते हैं, उन उन दर्जियों के पास, उन और शॉपिंग में, और उन दुकानों के ऊपर जिन चीजों को हमने बाद में गार्बेज कर देना होता है। कितनी मेहनत है हमारी, जहेज तैयार करने में, बरियां तैयार करने में कितनी मेहनतें हैं, एक शादी अटेंड करने पे कितनी हमारी मेहनत लगती है, बहन भाई की किसी शादी हो तो हम कितने दिन बाजारों में घूमते हैं, और अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, कुरान को सीखने के लिए कोई मेहनत नहीं। अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुम्हें राह दिखाए। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की इंसान के साथ जो हमदर्दी है और खैरख्वाही है और मोहब्बत है, उसका पता चलता है नायात से। कोई अपने प्यारे के लिए ही चाहता है ना, आप अपने बच्चों के लिए चाहती हैं ना कि वो सही रास्ते पे चले आए, वो कहीं बिगड़ ना जाए, वो कहीं रास्ता उल्टा कोई और इख्तियार ना कर लें गुमराही का। अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, लेकिन हम तुड़ा तुड़ा के जाना चाहते हैं इस रास्ते से, अपने आप को आजाद कराना चाहते हैं कि बस ये रास्ता नहीं। वह यतूबा अलैकुम, और मेहरबान हो तुम पर अल्लाह का ये इरादा। ये 3 चीजें हैं अल्लाह का इरादा। क्या पहली चीज है? कि वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी मिले। दूसरा क्या इरादा है? तो तुम्हें राह दिखा दे, उन लोगों का रास्ता जो बड़े अल्लाह को प्यारे थे, सिराते मुस्तकीम तुम्हें दिखाए, उस पे चला दे, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। अल्लाह का कोई शौक नहीं है तुम्हें अजाब देने का, अल्लाह का कोई ऐसा इरादा नहीं कि तुम्हें जहन्नुम में फेंके, उसके तो यही इरादा है कि मेहरबान हो तुम पर। अलैकुम, सारे जितनी भी बातें हैं वो इंसान की फायदे की है ना, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं, तुम्हारा ही फायदा है। ये उसने पाबंदियां नहीं तुम पे लगाई कि तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, वो कोई तुम्हें मुसीबत में डालना चाहता है, ऐसे ऐसे मुश्किल बातें इनको कहें कि ये इनसे करी ही ना जाए, ऐसे नहीं अल्लाह का इरादा। अल्लाह ताला तो मेहरबान होना चाहता है तुम पे, वो चाहता है तुम पे मेहरबानियां करे, इसलिए अल्लाह ने ये अहकाम दिए, तुम्हारी जिंदगियां इससे पुरसकून होंगी। और जहां पे मादर पिदर आजाद माशरे होते हैं, देख लिया इनका हाल, कितनी बेसकूनी है। माँ को पता नहीं है कि इसके बच्चे किस वाले बॉयफ्रेंड से हैं, उससे हैं या उससे हैं, या वो उसके साथ जिसके साथ एक रात गुजारी थी। जो बच्चे हैं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उनका बाप बनने को रेडी नहीं है, सब जान छुड़ाते फिरते हैं, माएं बच्चे पाल रही हैं, सिंगल मॉम्स कितनी हैं, और घरों में फिर बॉयफ्रेंड्स आते जा रहे हैं। इन बच्चों को कोई प्रोटेक्शन नहीं उन बॉयफ्रेंड से भी, कभी वो बॉयफ्रेंड ही उनकी इज्जत खराब कर देते हैं। किस माशरे की आप बात करते हैं, जहां पे कितने बच्चे हैं जो हराम से पैदा हुए हैं। वो औरतें बेचारियां रोने लगती हैं जब उनसे कोई रिश्ता उनको प्रपोज करता है। वो सारी जिंदगी इस चीज की तलाश में रहती हैं कि कोई वफादार आदमी मिल जाए। इस्लाम ने औरत को इतनी जबरदस्त प्रोटेक्शन दी, घर दिया, छत दी, आदमी दिया, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी हर चीज की जिम्मेदारी के लिए, उसके बच्चे जो वो पैदा करेगी उनकी भी जिम्मेदारी इस आदमी में। फिर कहती है नहीं, ये इस्लाम रिस्ट्रिक्ट करता है हमें। इस्लाम तो तुम्हें फायदा देता है, तुम्हारी हिफाजत करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला। देखो हर आयत के बाद ये कहा जा रहा है अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। समझो, अल्लाह यालमु मन खलक, क्या उसको ही नहीं पता जो जिसने तुम्हें पैदा किया? उससे ज्यादा किसको पता होगा? तो वो जो अलीम और हकीम है, उसने ये अहकामात दिए हैं, इनको अपने लिए फायदा मंद समझो, अपने लिए बुरा ना समझो। उनके लोग पढ़ लेते हैं, कुरान पाक को पढ़ भी लिया, ठीक है, अब हाँ अल्लाह ने ये अहकामात तो दिए हैं, अब क्या करें, मानना तो है, लेकिन अंदर दिल ना वो फिर भी ऐसे करता रहता है कि नहीं कुछ सही नहीं। अब बोलें कि अब जो कुछ लोग शर्म वाले होते हैं, कुछ तो इतने बेशर्म होते हैं कि वो फिर भी बोल देते हैं कोई बात, लेकिन जो कुछ उनमें थोड़ी हया होती है वो मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन दिल उनके फिर भी वो रहते हैं कि दिल मुतमईन नहीं रहते। मुतमईन हो जाओ, सिर्फ इस बात को ही सोच के मुतमईन हो जाओ कि जिसने ये कहा है ना, मुझे नहीं भी समझ आ रही ना, वो बताने वाला अलीम और हकीम है। डॉक्टर से नहीं आप कभी पूछते तुमने ये दवाई क्यों दे दी, तुमने मुझे सर्जरी का क्यों कह दिया, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों किया, कभी नहीं। हम ये कहते तुम्हें तो पता नहीं है, मुझे पता है। आप जाते हैं उसके पास ही उसकी एडवाइस लेने के लिए, फिर उस मुताबिक करते हैं, जैसे वो कहता है वैसे चलते जाते हैं, उसी तरह गोलियां लेते हैं, उसी टाइम पे लेते हैं। आप कहें नहीं तुमने तो सुबह को कहा, मैंने तो शाम को लेनी, नहीं मेरी मर्जी तो ये कि मैं 2 दफा ना लू, 4 दफा लू। आप कभी भी नहीं ये कहते, क्योंकि आप उसको जानते हैं कि वो क्या है, इल्म वाला है ना। आपको आपको ये यकीन है कि वो इल्म वाला है, इसलिए। और अल्लाह के इल्म के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है? वो अलीम है, अलीम। और अगर किसी को अलीम का मतलब जानना है ना, अस्माए हुस्ना में जाके, मैं यहाँ पे नहीं इतनी डिटेल में जा सकती, आई विश आई कुड, लेकिन अलीम का माना जानना है, समझना है, तो अस्माए हुस्ना में जाके अलीम को सुने कि वो कितना इल्म रखता है। अब ये सोचें कि उसने ये अहकाम दिए, और वो हिकमत वाला कितना, हमारी अकले वहां तक नहीं जा सकती।